समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी नजर रहेगी हमारी और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक में आज मैं हूं आपके साथ दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुस्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हस्बे दस्तूर हम हाजिर हैं ताजा तरीन खबरों के साथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है वील बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द शो एज वेल। वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग न्यूज पोरिंग इन थ्रू आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। एंड दिव्या, आज तो ओपनिंग सेरेमनी है इफ्फी की, सो स्टार्टिंग टूडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ स्पेशल रिपोर्ट एवरी डे फ्रॉम गोवा टू आवर लिसनर्स, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। बहुत कुछ है अगले ऑलमोस्ट रफली हाफ एन आवर में, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीचेस गुयाना टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एट जॉर्जटाउन दिस इवनिंग।
गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की।
Voting underway for single phase polling in Maharashtra and second phase of assembly elections in Jharkhand, except for Naxal infested 31 booths amid tight security. And 55th edition of International Film Festival of India to begin in Goa today.
शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु चीन के शेंजेन में चाइना मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
And now it's time for Dateline India, Divya. और आज का Dateline India बड़ा ही खास है, बड़ा ही मासूम है, बल्कि मासूम कह नहीं सकते, मासूमों के बारे में है। Yes,
जी जी।
Our Dateline India is about World Children's Day, and we all know that UN observes World Children's Day today. That is the 20th of November, and this day is observed to celebrate the youngest members of our society of the human family. और बच्चे दिल के सच्चे क्या लग, बच्चों का जब जिक्र आता है हर इंसान के चेहरे पे मेरे से खुशी आती है
और अपना बचपन भी याद आ जाता है कहीं ना कहीं सायरा।
यस, एब्सोल्युटली।
और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हर जन्मते बच्चे के साथ उन्हें ये विश्वास होता है कि ईश्वर अभी भी मनुष्य से हतोत्साहित नहीं हुआ है।
दैट्स वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई थिंक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यू कैन से क्रिएशन आर चिल्ड्रन।
बिल्कुल, ह्यूमैनिटी की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और बच्चे सही मायनों में देश के भविष्य हैं, उन्हें कल के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी है हमारी, इसीलिए विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो आज 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है। विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता विश्व के सभी बच्चों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। इसी दिन 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था।
यस, यू आर राइट। ऑन दिस डे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द डेट दैट द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड बोथ द डिक्लेरेशन एंड द कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट्स। सो हम लोग ने बच्चों की मासूमियत, उनकी क्यूटनेस की तो बात की, बट ऑफकोर्स इवन चिल्ड्रन हैव राइट्स और खासतौर से ऐसी कह सकते हैं मखलूक की राइट्स की बात करना जो अपने राइट्स के लिए खुद नहीं लड़ सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, यू एंड मी, वी शुड थिंक अबाउट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन।
राइट्स से बात याद आई तो अभी क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा सिवियर पॉल्यूशन हो रहा है और जितने बच्चे हैं वो सब अभी घर पर हैं, घर पर हमें सुन रहे होंगे।
एंड थ्रू हुज फॉल्ट, इज इट द चिल्ड्रंस फॉल्ट? नो, ये हम बड़ों की गलतियां थी जिनका खामियाजा
बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।
सो योर राइट टू लाइफ इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, एंड इनफैक्ट फॉर दोज किड्स हु आर, जिनको इस वक्त खेलने की उम्र है, दे आर, यू नो, दे आर सपोज टू प्ले आउट,
खेल सकते हैं ना, वो अभी फिलहाल स्कूल जा सकते हैं, तो वो स्क्रीन टाइम, फिर बच्चों से शिकायतें होती हैं कि वो स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं.
यस एब्सोल्युटली. सो आई थिंक ये भी उनके
ये हमें का... मतलब अगर हमें एक अच्छा भविष्य देना है बच्चों को, तो हमें हर स्तर पर, जलवायु से लेकर के खान पान से लेकर हर स्तर पर हमें भी काम करना होगा.
एब्सोल्युटली. दिस इज आई थिंक द बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन दैट वी नीड टू एंश्योर, एंड दिस इज द प्रॉब्ली लेगेसी दैट वी वांट टू हैंड ओवर टू देम, एंड नॉट जस्ट ऑफ द एनवायरमेंट. अ लॉट ऑफ लेगेसी ऑल्सो goes in terms of the whole upbringing, how you know, how evolved your child would be, how much you would expose your child to other cultures, to other people, to other kind of society, so that bigotry doesn't grow in them. So a lot of responsibility when we talk about kids.
तो ये दिन बच्चों को सशक्त करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने और अगली पीढ़ी के लिए एक अधिक समान और पोषण युक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता की याद दिलाता है. इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके कल्याण के लिए सुधार करने की वकालत करना है.
That's true, Divya. In fact, if you talk about the theme for this year, it's listen to the future, stand up for children's rights. And indeed, a very remarkable theme. But ye sari themes kahin khali kaagzon mein na kho jayein. So not just listen to the future, but also ensure that the present is as beautiful, because only then the future, today's present will be tomorrow's future, right? So we have to ensure that our today is very good and the children live up to it, isn't it?
हाँ, और बच्चों के लिए अगर आज के समय में हम विश्व स्तर पर देखें तो कई आंदोलन हो रहे हैं, कई देशों में युद्ध हो रहे हैं.
True.
और ऐसी स्थिति में, और जलवायु संकट भी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए हर तरह से कई सारी मुसीबतें हैं जिनका वो सामना विश्व स्तर पर कर रहे हैं.
Yes, absolutely. कई,
और पूर्वी दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी देशों में देखा जाए, पश्चिम अफ्रीकी और मध्य अफ्रीका में देखा जाए, तो बच्चे पहले से ही बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही महत्वपूर्ण जलवायु जोखिमों और पर्याप्त तो डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी का भी सामना कर रहे हैं.
दैट्स ट्रू. इन फैक्ट व्हाट अ ट्रैवेस्टी इंडीड दिव्या, सिंस यू मेंशन्ड अबाउट द वॉर्स. आई मीन वी फॉरगेट दैट वी आर फाइटिंग फॉर बॉर्डर्स व्हिच वी आर नॉट गोइंग टू टेक विद अस. वी आर फाइटिंग फॉर लैंड, वी आर फाइटिंग फॉर एवरीथिंग, एंड जस्ट टर्मिंग द डेथ ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन एज कोलैटरल डैमेज. आई थिंक इससे बड़ी तो इंसानियत का मेरे ख्याल से पतन और कुछ भी नहीं हो सकता.
बट सायरा, अभी वर्तमान में लगभग 1 अरब बच्चे हैं जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर पहले से ही जलवायु और पर्यावरणीय खतरा मौजूद है.
Absolutely. So I think we should be, it's very alarming because what we are doing, our actions today are definitely going to affect the children of tomorrow. So it's our responsibility, a huge responsibility rather. If we, agar kehte nahi hum, thoda sa agar hum log 5 minute khali aag band karke soche iski gambhirta, to it's a very very grave situation. But nonetheless, we should not be hopeless, because ek bade mashhoor shayar ne kaha tha, bhai dil na umeed to nahi na kaam hi to hai. लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है.
बिल्कुल. इसी से मुझे ये भी मैं आपको बताना चाहूँ और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अभी भी दुनिया में ऐसे 26% जो बच्चे हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. 95% से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उच्च आय वाले देशों में. तो अभी भी कई बच्चे हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं. इतनी निराशाओं के बीच में आशा बिल्कुल है.
Yes.
और बनी रहेगी हमेशा. और साथ ही मैं, जितने भी हमारे श्रोता हमको सुन रहे हैं, तो आज विश्व बाल दिवस पर हम दोनों ही, मैं और सायरा दोनों ही, ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज से ही अपने आसपास के बच्चे, अगर आपके घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वरना अपने आसपास के बच्चों से भी बातचीत करना शुरू करें.
yes.
देखिएगा किस तरीके से वो आपके इर्द गिर्द कितनी सकारात्मकता, कितनी खुशियां लेकर आएंगे, और बच्चों से उनके विचारों के बारे में जाने, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जाने, उनके भविष्य की क्या उनकी आकांक्षा हैं.
True.
उसके बारे में बात करें उनसे.
इनफैक्ट दिव्या, विच इज सम हाउ इन आर इंडियन सोसाइटी आई बिलीव बहुत सी अच्छी चीज भी है, बट व्हेन वी बिकम पेरेंट्स वी आर अ वेरी कंट्रोल फ्रीक सोसाइटी.
जी जी.
हम लोग बच्चों को एज इंडिविजुअल्स देखते ही नहीं, हम लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर की तरह.
बिल्कुल
देखते हैं.
पहले ये होता था, संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी, उसमें बच्चे सीखते थे, उनका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से होता था. और अब क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास के जो बच्चे हैं उन सब से बात करें, बात करने के मौके ढूंढे कि कैसे उनसे बात की जाए.
अपने आसपास, पहले तो कहते नहीं है, पहले अपना घर संभाले तब जाके समाज अच्छा बनेगा, क्योंकि शुरुआत घर से होती है. तो इवन आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल आवर पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस दैट ट्रीट योर चिल्ड्रन नॉट एज योर प्रॉपर्टी, बिकॉज एज द ग्रेट राइटर खलील जिब्रान हैड सेड इन हिज वेरी वेरी फेमस वर्क द प्रॉफिट, दैट योर चिल्ड्रन आर through you, not from you. So you are just a medium for the quest for life itself, that they had to come in this world. आप ये मत सोचिए कि वो आपकी जागीर है, वो आपसे नहीं है, आपके जरिए आए हैं. That's it.
और इस बात पर मैं ये बोलना भी चाहूंगी सायरा कि मैं खुद ऐसा कर रही हूँ, इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से बता भी सकती हूँ कि आसपास के बच्चों से मैं बात करती हूँ तो शुरुआत में वो आते हुए थोड़ा सा झिझकते थे, लेकिन अब वो बात करते हैं, अपने दिल की बात कह जाते हैं आकर के, तो उनको एक आत्म अभिव्यक्ति का जो मौका मिलता है उसके बाद उनकी खुशी एट पार होती है एकदम.
Absolutely.
तो हर बच्चे का अधिकार है कि वो सुने जाएं, वो उनको खेलने के लिए मैदान मिले, उनको अभिव्यक्त करने के लिए, खाने पीने के लिए, हर तरह से हम उनको महफूज महसूस कराएं.
एंड एज वी कॉल द फॉर्मेटिव ईयर्स दिव्या, तो जो इवन गीता में लिखा है कि 5 साल तक के जो बच्चे की जो है,
बिल्कुल,
you know, उसको आप बेपनाह प्यार दीजिए, यू नो. तो जितना भी आपको जो है उसको केन के जरिए जैसे भी सही करना है, दैट कैन वेट, बिकॉज टिल 5 ईयर्स अ चाइल्ड इज, यू नो, इतने सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं साइंटिफिकली भी अगर बात करें. तो अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिमार्केट वॉट इज गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, उसका तो जो दिल चाहेगा वो करेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to train kids in a very loving way.
बिल्कुल. और एक बच्चे की हंसी जो होती है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है. आज हर बच्चे के लिए खुशी की कामना के साथ आइए सुनते हैं.
छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हम
With humanity breaching critical ecological limits, children are already coping with more unpredictable, hazardous environments than children of any previous generation. From before they take their first breath, children's development is impacted by their environment. जिसे हम लोग की scriptures में भी कहा गया ना, जो गर्भ संस्कार होते हैं, तो मैं उनको हमारे you know वेदास ने कितने पहले कह दिया. But it's so important that even before they come outside in the physical environment, the physical environment starts affecting the child in the womb. What the mother is thinking, what the mother is absorbing through her environment, everything affects it, isn't it? So on this note, I think we should wrap up our Dateline India, and well, a very happy World Children's Day to everyone, to all the children, to all the elders, and please ensure the rights of children. Thank you.
और अब परिक्रमा में समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफी की.
यस, एब्सोल्युटली, एज वी मेंशन्ड जस्ट राइट एट द बिगनिंग ऑफ द शो, दैट फ्रॉम एवरी डे नाउ ऑन, यू नो, टिल इफी इज देयर हैपनिंग इन गोवा, वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट. और आज तो ओपनिंग सेरेमनी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्टार स्टडेड इवनिंग ओवर देयर, एंड स्पेशली गोवा इज माई फेवरेट प्लेस ऑन अर्थ, सो माई हार्ट इज ऑलरेडी बी Think for if we let's listen to other report. Yes, the stage is set and the countdown has begun for the grand opening of the 55th International Film Festival of India in Goa. In just a short while, the star-studded ceremony will dazzle audiences at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Panaji. The ceremony will take audiences on a nostalgic journey through the evolution of Indian cinema, from movies of silent era to the masterpieces of today. Earlier this afternoon, the excitement peaked as cinephiles gathered at Inox Panjim for the red carpet premiere of Better Man, directed by Michael Gracie. The biopic, which explores the life of iconic British pop star Robbie Williams, was met with enthusiastic applause, setting a high bar for the cinematic celebrations to come. Sanjay Bhagwat, a movie enthusiast from Surat in Gujarat, has travelled with his friends to experience and enjoy both popular and experimental cinema at IFFI. Talking to Akashvani, he said that IFFI brings together films of all genres, from popular blockbusters to experimental works.
We always have been interested in the movies too, which are from different regions, different cultures and backgrounds. So this is a festival actually brings everybody here from all genres and right from very popular films to experimental films. And I am a movie enthusiast and it is my own interest, personal interest. I am traveling to Goa, which I was planning for a long time, and this time it has happened. I am very happy to be here and I have already checked my list of which movies I am going to watch. And already there is so much interest by people that now you are not getting your actually entries for the movies which we want to watch. But this is very interesting that people are taking so much, initiative and all. And I think all over the India, you can say this was whoever has planned the Goa could be the best place to host this kind of festivals. Goa basically is a festive city.
हमने एक और एंथुसियास्ट शैली से भी बात की जिन्होंने कहा कि इफी में क्यूरेशन ऑफ फिल्म्स जो है वो ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ लंदन से भी ज्यादा बेहतरीन है. आइए सुनते हैं.
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट वी हैव कम हियर. वी लिव इन गोवा एंड दैट्स अनदर अट्रैक्शन फॉर अस. एंड द काइंड ऑफ मूवीज दैट आर शोन हियर, द वे दे आर क्यूरेटेड इज जस्ट मार्वेलस. वी हैव जस्ट कम फ्रॉम द ब्रिटिश फिल्म फेस्टिवल व्हिच इज द BFI इन लंदन एंड वी फाइंड दैट द मूवीज दैट हैव बीन क्यूरेटेड हियर आर मच मच बेटर देन व्हाट वी फाउंड देयर. एंड सो इट्स अ स्पेशल प्लेस, इट्स एक्साइटिंग, इट्स अबाउट आवर कंट्री. And it is just marvelous to be here and to enjoy the colors and to enjoy the movies and the storytelling.
And Divya, many people have been coming to IFFI through all the years. In fact, they wait for this time of the year when IFFI happens to visit Goa and to watch beautiful cinema. And so one of the delegates, Ashok Tathagade, has come from Pune to attend the event. And he has been participating in IFFI from the last 15 years. And he said that IFFI is special because the movies premiered here are not easily accessible elsewhere.
See, I've been coming to the festival for the last 15 years. And I've seen also the changing moods of the festival, so to say. See, there's one of the things that bring me to the festival is that it's a wonderful mix of the lot of countries and their specific movie makings. The characteristics of the making movies of, this is China, Korea, Japan, US, and these are different. So that makes you don't see outside at all. Secondly, these movies that are screened in the festival, you don't see it very easily outside. Neither on the apps, neither on the OTT platform. So that's another thing. Thirdly, they also constantly give opportunities to the debut films, right? Either it will be a direction or music or acting or anything. So the other part of it is the character of an international mix into it. Like you said, of course, they also give some importance to the retro films and their characteristics and the modern films and their characteristics. So all this together forms an extremely, what I would say, magnetic feeling about the festival, and it brings to people like us often, more and more every year.
And yes, in this edition, IFFI will celebrate the centenary of four Indian cinema legends, Raj Kapoor, Mohammad Rafi, Tapan Sinha and Akineni Nageswara Rao, through special audiovisual performances during the opening ceremony. Moreover, Film Bazaar, which is a platform for filmmakers to network and market their work, it will also run on the sidelines of the event. IFFI will conclude on the 28th of November. Akashvani is exclusively covering IFFI, so stay tuned for exclusive bites from cinephiles, filmmakers and festival delegates as we bring you more insights from the heart of IFFI 2024. तो ये तो बात हो गई इफ़ी की, गोवा की, और अब हम लोग अपने परिक्रमा के सिलसिले में कहीं और चलते हैं. लेट्स टेक आवर लिसनर्स डाउन साउथ टू
विशाखापट्टनम.
यस, द नेशनल लाइब्रेरी वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 14th टू 20th ऑफ नवंबर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू रीडर्स थ्रू द बुक्स. और विशाखापट्टनम में किस तरह लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स लिसन फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
57th National Library Celebrations inaugurated at the Visakhapatnam District Central Library by Collector M.N. Harendra Prasad. He said that there is no friend beyond the book, and libraries are the ones that have paved the way for personality development. National Library Day has a special relationship with Andhra Pradesh. In 1919, under the auspices of the Andhra Library Association, Ayyanki Venkatramaya organized a two-day National Library Conference in Madras on November 14 and 15. The dates of the first national conference successfully organized by the Telugu people were declared as National Library Day. Since 1968, the Government of India has decided to organize weekly festivals for libraries across the country. Since then, National Library Week is celebrated annually from November 14 to 20, an observance initiated in 1968 by the Indian Library Association. This week highlights the importance of libraries and librarians in fostering education, literacy, and community development. The week honors a tradition initiated by Ayyanki Venkatramaya, celebrated as the architect of the public library movement in India. Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
और अब विशाखापट्टनम से अब हम चलते हैं
रांची,
जहां पर आज इलेक्शन का टाइम है। तो राज्य में आज दूसरे चरण के मतदान के तहत 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
राज्य में आज दूसरे चरण के मतदान के तहत 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। इस दौरान शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अधिक रहा था। सरायकेला और खरसावां सीटों पर 80% के लगभग वोट पड़े, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम वोट पड़े, जिसमें रांची सीट के लिए सबसे कमजोर प्रदर्शन लगभग 53% रहा। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता लाने और मतदाताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि जामताड़ा जिले में पहली बार एक स्पेशल बूथ बनाया गया है, जो केवल कुष्ठ रोगियों के लिए है। चुनाव आयोग के इस कदम की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। आशा है कि राज्य में दो चरणों में हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप जो नई सरकार बनेगी, वह राज्य के उत्थान और यहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कदम उठाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रांची से मैं पूनम केरकट्टा।
And Divya, the other place where assembly elections are taking place is Maharashtra. तो जाहिर सी बात है अगला पड़ाव हमारा परिक्रमा के सफर में महाराष्ट्र ही है, where voting began at 7 in the morning and it's going to conclude at 6 p.m. And our Mumbai correspondent reports that several interesting initiatives were witnessed during the day, with many people as old as 100 years of age. They came out to cast their votes and inspired one and all. Let's hear more from our Mumbai correspondent.
In Gadchiroli, a 111-year-old woman, Phoolmati Sarkar, came out to cast her vote, thereby inspiring many to perform their national duty. Apart from her, there were two other centenarians, one a 105-year-old Gigi Parekh from plush locality of Malabar Hill in South Mumbai, who also exercised his right to vote. In another interesting initiative, first five electorates were welcomed with a sapling and flower at a model polling station in Wadala in central Mumbai, which is specially designed to create awareness on the importance of green environment. Besides, free bus rides were also provided to facilitate Divyang and senior citizens from their residence to polling stations. Many traders, business houses have also come up with attractive offers to encourage people to cast their votes. With Aparna Kunt, this is Kunal Shinde, Akashwani News, Mumbai.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
On 20th November 1902, Gandhiji went back to South Africa at the request of the Indian community and revived the fight against anti-Asian laws. One such legislation, Asiatic Law Amendment Act, forced the Indians in the Transvaal province to get registered with the Registrar of Asiatics, submit to physical examinations, provide fingerprints, and carry a registration certificate at all times. Otherwise, Indians and other Asiatics, as they were called, could be fined, imprisoned, or deported.
It came to be known as Black Act. When the certificate offices opened on July 1, 1907, registers picketed outside the offices and dissuaded passing Indians from registering. They gathered support for non-cooperation in temples, mosques, and churches. Initially known as the Passive Resistance Campaign, Gandhiji coined the term Satyagraha as an alternative name. At the closing of registration, only 511 out of the 13,000 Indians in the region had registered.
In January 1908, Gandhiji was arrested. The jails were filling rapidly with Satyagrahis refusing to register. Later that month, military leader General J.C. Smuts was forced to negotiate. With Gandhiji and other campaign leaders in prison, General Smuts presented an ultimatum. If Indians would register voluntarily, the Black Act would be repealed and prisoners released. Gandhiji agreed on behalf of the campaign.
After word of the deal spread, some campaigners felt betrayed. In the middle of February, Gandhiji was attacked and injured by a group of angered satyagrahis on his way to the registration office. He reiterated his trust in General Smuts and registered himself. Soon after, Smuts introduced a bill validating the voluntary registrations, but did not keep his word about the Black Act. Gandhiji gave him until August 16, 1908, to fulfill his promise and repeal the Act.
Gandhiji's leadership was accepted for the next phase in the struggle. The last ultimatum was sent to General Smuts: repeal the Black Act, or registration certificates will be burnt. Ultimately, 2,000 registration certificates were burnt by satyagrahis in a giant fire.
20th of November is also the birth anniversary of the great anti-British warrior and the ruler of the erstwhile kingdom of Mysore, Tipu Sultan. He was born as Sultan Fateh Ali Sahab Tipu in 1750 in Devanahalli, Bengaluru. He was the oldest son of Sultan Haider Ali of Mysore. Tipu was trained to be a warrior from his early teens, and he accompanied his father on campaigns against rivals such as the British East India Company.
Known as the Tiger of Mysore, he fought several successful wars against the East India Company, starting in 1766 when he participated in a campaign at the age of 15. In 1780, Tipu defeated Colonel Bailey of the East India Company at the Battle of Pollilore. The following year, he seized Chittoor from the British, and in 1782, he defeated Colonel Braithwaite at the Battle of Annaguri near Tanjore.
Tipu was a pioneer in the use of rocket artillery. He deployed the rockets against British forces and their allies in their 1792 and 1799 siege of Srirangapatna and during the other Anglo-Mysore wars. After his defeat in 1799, the British shipped these weapons to Britain to replicate them through reverse engineering. Napoleon, the French commander-in-chief who later became emperor, sought an alliance with Tipu.
Tipu was a believer in international trade and sent trade delegations to Afghanistan, Iran, Turkey, and Myanmar. He rationalized the administrative system and encouraged the local industries. He introduced a new coinage, a new calendar, and a new land revenue system, which initiated the growth of Mysore silk industry. Tipu is also credited with modernization of the army, roads, and irrigation system. He built the first road network in Malabar in Kerala. Tipu was killed in May 1799 while defending his fort at Srirangapatna against the British forces.
और अब परिक्रमा के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज की. चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड और लक्ष्य सेन आज के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए. सिंधु ने पहले दौर में मलेशिया की बुसानन ओंग बामरुंग फान को और मालविका ने डेनमार्क की लाइन होजमार्क जर्सफेल्ट को हराया. पुरुष वर्ग में लक्ष्य ने सातवीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जी जिया को पराजित किया. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि.
यस, सो इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हीराबाई बारोडकर से.
वो किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था. उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था. और उन्होंने 15 अगस्त के दिन जब देश आजाद हुआ तब लाल किले पर खास तौर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था. और वो पहली महिला थी जिन्होंने पुरुष वर्चस्व में और अपनी एक जगह बनाई थी और कॉन्सर्ट किया था, पहला कॉन्सर्ट किया था.
यस, इनफैक्ट शी इज नोन फॉर हर रेंडिशन ऑफ तार शतज व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ फंडामेंटल पिलर ऑफ राग संगीत.
बिल्कुल, जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें गान सरस्वती की उपाधि दी और सरोजनी नायडू ने उन्हें गान कोकिला की उपाधि दी थी. और आज फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह की जयंती है. देश की आजादी के बाद उन्होंने पहली बार देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण दिलाया. वर्ष 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था. और मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए.
Also the birthday of Rajkumar Hirani aur jaate jaate jaldi se unki film ka ye gana sun lete hain.
Pal 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 har pal har pal kaise katega pal har pal har pal.
और इसके साथ ही श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे और सायना को दीजिए अनुमति.
नमस्कार.